लाउडेटुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु येसु ख्रिस्त के नाम पर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि कलीसिया सह जिम्मेदारी के संकेत रूप में सभी तरीकों से धर्म सभा की जीवन शैली को बनाए रखे तथा पुरोहितों, धर्म बहनों और आम लोगों के बीच भागीदारी, एकता और मिशन को बढ़ावा दे। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवार ये आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, इस रविवार को हम ख्रिस्त राजा का महोत्सव मनाते हुए कलीसिया के पूजन विधि वार्षिक कालचक्र का समापन करते हैं। यीशु ख्रिस्त वे अनंत और अनश्वर राजा हैं जो इस धरती पर अपनी चुनी हुई प्रजा के खातिर मानव बनकर आए। वे इस धरती पर इसलिए आए कि वे मानव को अनंत मृत्यु और पापों की गुलामी से बचाकर अपने अनंत निवास में ले जा सके। स्वर्ग और दुनिया के राजा धीराज यीशु ख्रिस्त अपनी प्रजा मानव को, जिसे उन्होंने अपने ही अनुरूप बनाया, अपने प्राणों का बलिदान अर्पित कर पाप और मृत्यु के सौदागर दुनिया के शत्रु शैतान के चुंगल से छुड़ाने आए। श्रोताओं, आइए हम ख्रिस्त राजा महापर्व हेतु निर्धारित सुसमाचार पाठ का श्रवण करते हुए अपने हृदय की थाह लें कि हम स्वर्ग और पृथ्वी के राजा को अपने जीवन में कौन सा स्थान देते हैं। हमारे हृदय में उस राजा के प्रति कितनी भक्ति और श्रद्धा है जो हमारे लिए अपना सब कुछ, यहाँ तक कि अपना हृदय खोलकर खून के अपने आखिरी कतरे को भी बहा देते हैं। क्या हम उस जीवनदायी राजा को अपने हृदय में जगह देते और उन्हें अपना छोटा प्रेम दिखलाते हैं, जो प्रेम के खातिर अपने पिता के घर स्वर्ग राज्य को छोड़कर हमें नए जीवन की सौगात देने और अपने अनंत निवास में ले जाने हेतु हमारे बीच आए।
तब पिलातुस ने ईसा को बुला भेजा और उनसे कहा, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? ईसा ने उत्तर दिया, क्या आप यह अपनी ओर से कह रहे हैं या दूसरों ने आपसे मेरे विषय में यह कहा है? पिलातुस ने कहा, क्या मैं यहूदी हूँ? तुम्हारे ही लोगों ने और महायाजकों ने तुम्हें मेरे हवाले कर दिया है, तुमने क्या किया है? ईसा ने उत्तर दिया, मेरा राज इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज इस संसार का होता तो मेरे अनुयायी लड़ते और मैं यहूदियों के हवाले नहीं किया जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, तो तुम राजा हो? ईसा ने उत्तर दिया, आप ठीक ही कहते हैं, मैं राजा हूँ। मैं इसलिए जन्मा और इस संसार में आया हूँ कि सत्य के विषय में साक्ष्य दूँ। जो सत्य के पक्ष में है वह मेरी सुनता है।
श्रोताओं, सुसमाचार के सुमधुर वचन हमें यीशु ख्रिस्त को व्यक्तिगत रूप में अपने जीवन का राजा स्वीकारने में मदद करे, क्योंकि वे ही दुनिया के असल राजा हैं, जिसमें हम अपने जीवन की सच्ची खुशी, अमन चैन का अनुभव करते हैं। श्रोताओ, नबी दानियल के ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ हमारे लिए एक दिव्य दर्शन में राजा ख्रिस्त के राज्य की चर्चा करता है, जो बादलों पर आते जिन्हें प्रभुत्व, सम्मान और राज्यत्व दिया जाता है। सभी देश, राष्ट्र और विभिन्न भाषा भाषी उनकी सेवा करते हैं। उनका प्रभुत्व अनंत है। यह हमारे लिए स्वर्ग में पिता के सम्मुख पुत्र ईश्वर के उपस्थित होने का हाल प्रस्तुत करता है, जिसकी सेवा पूजा सभी देशों और राष्ट्रों के लोग करते हैं, क्योंकि उसने अपने पिता की इच्छा को धरती में मानव बनकर आते हुए आज्ञाकारिता में पूरा किया है। पहला पाठ हमारे लिए स्वर्ग राज्य का हाल प्रस्तुत करता है, जिसके बारे में स्वयं यीशु ख्रिस्त पिलातुस से चर्चा करते हैं। यह वही सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर के अनंत निवास का दृश्य है, जिसके सहभागी होने हेतु हम सभी बनाए गए हैं। श्रोताओं, मानव के लिए शांति और अनुग्रह ईश्वर के निवास में प्राप्त होता है। प्रकाशना ग्रंथ से लिया गया आज का दूसरा पाठ हमारे लिए ईश्वर में मिलने वाली उसी शांति और अनुग्रह की चर्चा करता है, जो जीवनदाता ईश्वर में विश्वास करने के कारण हमारे लिए मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त में पिता की ओर से आता है, क्योंकि वे हमें प्रेम करते हैं। पिता ने हमें अपने बेटे यीशु ख्रिस्त में प्रेम किया है, और इस प्रेम का प्रमाण हमारे लिए यही है कि उन्होंने हमारी मुक्ति के लिए उन्हें स्वर्ग से दुनिया में भेजा। पुत्र अपने पिता और मानव जाति के खातिर अपने प्रेम का प्रमाण अपने जीवन की आज्ञाकारिता में हमें देते हैं। इस आज्ञाकारिता में हम पुत्र को क्रूस ढोती और मानव मुक्ति हेतु भारी दुख सहते हुए पाते हैं, और इस भांति पुत्र ईश्वर की मृत्यु और पुनरुत्थान द्वारा हम सभी पापी मानव अपनी असल विरासत को पुनः प्राप्त करते हैं, जहां हम ईश्वर की राजकीय प्रजा के अंग बनते हैं। श्रोताओ, आज के सुसमाचार में हमने दो राजाओं के बीच एक वार्ता सुनी। इस वार्ता में यीशु अपने राजा होने की बात को स्वीकारते और उसे घोषित करते हुए कहते हैं, मेरा राज्य इस दुनिया का नहीं है। यदि मेरा राज्य इस दुनिया का होता तो मेरे सिपाही लड़ते। यीशु के इन वचनों को सुनते हुए स्वयं पिलातुस उनके राजा होने की बात स्वीकारते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात जनता के नेताओं के भय के कारण वे यीशु का पक्ष लेने का साहस नहीं कर पाते हैं। इतना ही नहीं, यीशु एक सच्चे राजा के मूल्यों की झलक पिलातुस के सामने पेश करते और अपने दुनिया में आने के रहस्य का उद्भेदन भी करते हैं। मैं इसलिए जन्मा और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य के विषय में साक्ष्य दूं। जो सत्य के पक्ष में है वह मेरी सुनता है। श्रोताओं, एक सच्चे और न्यायी राजा के रूप में यीशु ने अपने पूरे जीवन में सत्य का साक्ष्य दिया। सत्य के साक्ष्य देने हेतु ही उन्हें अपने जीवन की कीमत चुकानी पड़ी। यीशु ने बुराई, दिखावा, झूठ, चालबाजी और असत्य का प्रतिकार किया, जो समाज और जनता के नेताओं, शास्त्रियों, फरीसियों और सदुकियों में व्याप्त था, और इसका परिणाम यह हुआ कि उन पर झूठा दोष तथा आरोप लगाया गया और उन्हें क्रूस में सजाएं मौत मिली। पिलातुस के सामने खड़ा होते हुए यीशु ने स्वयं पिलातुस को सत्य का साक्ष्य देने की चुनौती दी, लेकिन वह दुनियादारी से ग्रसित होने के कारण सत्य का साथ देने में असफल रहा। पिलातुस को अपने सिंहासन खोने का भय था, जिसके कारण उसने यीशु के साथ न्याय करने के बदले अन्याय किया। श्रोताओं, ख्रीस्त राजा महोत्सव का प्रभु संदेश हम ईश प्रजा को सत्य का चुनाव और सत्य का साक्ष्य देने की चुनौती देता है। आज हम में से कितने हैं जो इस चुनौती को स्वीकार करते हैं? हम में से कितने हैं जो राजा यीशु के संग सत्य का मार्ग चुनते हुए उनके संग खड़ा होने का जज्बा रखते हैं? हम में से कितने हैं जो दिखावा, दुनियादारी और झूठी शान शौकत से अपने को अलग रखते हुए दुनिया के सामने सच्चाई का साक्ष्य देने की ताकत रखते हैं? इस चुनौती को स्वीकारना हमारे लिए कलवारी के मार्ग का चुनाव करना और अपने लिए क्रूस का आलिंगन करना है, जो सबके वश की बात नहीं है। सत्य का चुनाव करना हमारे लिए यीशु के समान घोर दुख पीड़ा का सामना करना है, जो किसी दूसरे के द्वारा नहीं बल्कि निश्चित ही स्वयं अपने ही लोगों के द्वारा आता है। आइए हम राजा यीशु ख्रिस्त से उस शक्ति की मांग करें, जिस शक्ति से उन्होंने अपने उत्तरदायित्वों को पूर्ण निर्भयता और निष्ठा में पूरा किया। हम भी अपने शारीरिक कष्ट के भय से ऊपर उठते हुए अपने कार्यों को उस राजा के लिए निष्ठा में पूरा कर सकें, जो हमें उनके राज्य का उत्तराधिकारी बनाएगा।
राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं
वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप फ्रांसिस ने सभी ख्रिस्तियों का आह्वान करते हुए कहा है कि हम पवित्र आत्मा द्वारा दी गई सांत्वना के संदेश वाहक बने। जब दुनिया में युद्ध और तनाव बढ़ते जा रहे हैं, पोप ने शनिवार को एक्स के माध्यम से अपने संदेश में कहा, आज हमारी दुनिया आशा का दुखद अकाल महसूस कर रही है। इतना दर्द, खालीपन और असहनीय दुख हमें घेरे हुए है। आइए हम पवित्र आत्मा द्वारा दी गई सांत्वना के संदेश वाहक बने, क्योंकि जब हम आशा का संचार करते हैं तो प्रभु हमारी यात्रा में नए रास्ते खोलते हैं। शनिवार को वैटिकन के न्यायालय रोता रोमाना द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कोर्स के प्रतिभागियों से मुलाकात करते हुए पोप फ्रांसिस ने उन्हें आशा के संदेश वाहक बनने के लिए प्रेरित किया। संत पापा ने उन्हें संबोधित कर कहा, सच्चाई में न्याय और परोपकार के कार्यकर्ताओं के रूप में कलीसिया आप पर बहुत भरोसा करती है। आपके काम आशा से भरे हों, जो आगामी जयंती वर्ष का मूल है। उन्होंने कहा, हम अभी से खुद को आशा से प्रेरित होने दें और इसे हमारे माध्यम से उन सभी लोगों के लिए फैलाएं जो इसे पाना चाहते हैं। संत पापा ने उनके मिशन पर अपनी आशीष प्रदान करते हुए अपने संदेश का समापन किया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की महासचिव चेलेस्ते सावलो ने वैटिकन न्यूज से पोप फ्रांसिस के साथ हुई अपनी बातचीत के बारे में बात की, जिसमें उन्होंने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ठोस प्रयासों की तत्काल आवश्यकता पर चर्चा की। बातचीत के दौरान उन्होंने जलवायु परिवर्तन पर अपनी साझा चिंताओं पर चर्चा की तथा जलवायु कार्रवाई की तात्कालिकता पर सहमति व्यक्त की। पोप से मुलाकात के उपरांत वैटिकन न्यूज से बात करते हुए सावलो ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र एजेंसी इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर परमधर्म पीठ और अन्य धर्मों के साथ घनिष्ठ सहयोग की आशा कर रही है, जो हमारे ग्रह और मानवता के लिए एक बड़ी चुनौती है। सावलो ने कहा, पोप फ्रांसिस जलवायु परिवर्तन के बारे में बहुत चिंतित हैं और मुझे लगता है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन वैटिकन के साथ मिलकर हमारे आम घर की रक्षा के लिए कई काम कर सकता है। उन्होंने कहा कि WMO द्वारा निगरानी किए जाने वाले सभी संकेतक, चाहे वह वैश्विक तापमान में वृद्धि हो, समुद्र के बढ़ते जल स्तर हो या ग्लेशियर का पिघलना हो, बदतर ही होते जा रहे हैं, जिसका अर्थ है कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं।
उन्होंने कहा, इसका पलायन बच्चों, महिलाओं, आदिवासियों, अधिक असुरक्षित लोगों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इस सप्ताह पूर्वी कलीसिया के समाचार में मुख्य बातें हैं। जूलियन कैलेंडर के अनुसार कलीसियाएं आगमन काल की शुरुआत कर चुकी हैं तथा भारत में कलीसिया की संपत्ति जांच के दायरे में है। रविवार 17 नवंबर को जूलियन कैलेंडर के अनुसार पूर्वी कलीसिया के ख्रिस्तियों ने आगमन काल की शुरुआत की। इथियोपिया में आगमन काल को नबियों के उपवास के रूप में चिन्हित किया जाता है। इस अवधि के दौरान श्रद्धालु मांस खाने से परहेज करते हैं और दिन में एक बार भोजन करते हैं। तमिलनाडु में एक अदालत के फैसले ने कलीसिया की संपत्ति के प्रबंधन पर सवाल उठाया है। अदालत का कहना है कि इमारतों का प्रशासन राज्य द्वारा किया जाना चाहिए। धार्मिक अल्पसंख्यकों को लक्षित करने वाले धर्मांतरण विरोधी कानून को देखते हुए यह ख्रिस्तियों के बीच चिंता का विषय है।
शनिवार 23 नवंबर को वाटिकन के संत पापा पॉल षष्ठम सभागार में इटली के विभिन्न हिस्सों से आए मछुआरों और इतालवी धर्माध्यक्षीय सम्मेलन द्वारा प्रचारित यूरोप में राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाओं पर हो रहे सम्मेलन के प्रतिभागियों से संत पापा फ्रांसिस ने मुलाकात की। संत पापा ने कहा, समुद्री दुनिया के प्यारे भाई और बहनों, मैं सबसे पहले आपको संबोधित करता हूँ। आपका व्यवसाय बहुत पुराना है, कलीसिया की शुरुआत भी इससे जुड़ी हुई है, जिसे ईसा मसीह ने पेत्रुस को सौंपा था, जो गलील में एक मछुआरा था। संत पापा ने कहा कि आज यह व्यवसाय विभिन्न कठिनाइयों का सामना कर रहा है, इसलिए उन्होंने उनके कार्यों के महत्व और इस मूल्य से जुड़े मिशन पर विचार करने हेतु सुझाव दिया। संत पापा ने कहा, संत लूकस के सुसमाचार में हम पाते हैं कि शिष्यों ने विपरीत हवा के कारण रात भर कड़ी मेहनत की, परंतु थके हुए वे खाली हाथ जमीन पर लौटे। चेलों के समान वे भी कड़ी मेहनत करते हैं, जिसमें सामान्य चुनौतियों और नई समस्याओं का सामना करते हैं, जैसे कि कठिन पीढ़ीगत परिवर्तन, लगातार बढ़ती लागत, दम घोटने वाली नौकरशाही, बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा इत्यादि। उनका सामना करने के लिए त्याग और दृढ़ता की आवश्यकता है। हालांकि यह आपको हतोत्साहित नहीं करता है, इसके विपरीत यह आपकी एक और विशेषज्ञता को बढ़ाता है, एकता। समुद्र में जाल डालने के लिए एक दल के रूप में या इससे भी बेहतर एक समुदाय के रूप में एक साथ काम करना आवश्यक है। फिर संत पापा ने यूरोप में राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाओं पर हो रहे सम्मेलन के प्रतिभागियों को संबोधित किया और एक टीम के रूप में मिलकर काम करने के अनुभव के दो पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया। पहला है उन लोगों की देखभाल करना जो दूसरों की देखभाल करते हैं। संत पापा ने कहा, वास्तव में यह महत्वपूर्ण है कि आप स्वास्थ्य कर्मी भी ऐसे ही लोग हैं जिन्हें उन भाई बहनों की तरह ही सहायता की जरूरत है जिनका आप इलाज करते हैं। इस कारण से मैं आग्रह करता हूं कि आप स्वयं की उपेक्षा न करें, बल्कि एक दूसरे के संरक्षक बनें। दूसरा पहलू सबसे कमजोर लोगों के लिए करुणा। संत पापा ने कहा, आप जिस स्वास्थ्य प्रणाली और सेवाओं से आते हैं उनमें संवेदनशीलता का एक महान इतिहास है, विशेष रूप से उन लोगों के प्रति जिन तक सिस्टम की पहुँच नहीं है, त्याग दिए गए लोगों के प्रति। अंत में संत पापा ने उनसे आग्रह किया कि वे अपने पारिवारिक रिश्तों की रक्षा करें। वे स्वस्थ और बीमार दोनों के लिए दवा है। और वाटिकन प्रेस कार्यालय ने शनिवार को घोषणा की कि संत पापा फ्रांसिस 15 दिसंबर को फ्रांस के कोर्सिका द्वीप की यात्रा करेंगे, जो उनकी 47वीं विदेश प्रेरित यात्रा होगी। स्थानीय नागरिक और कलीसिया के अधिकारियों ने स्थानीय धर्म प्रांत द्वारा द्वीप की राजधानी आयाचो में आयोजित भूमध्य सागर में लोकप्रिय धार्मिकता पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी को समाप्त करने के लिए संत पापा को आमंत्रित किया है। और 2024 के रात्सिंगर पुरस्कार प्राप्तकर्ता आयरिश धर्मशास्त्री सिरिल ओरेगन और जापानी मूर्तिकार एत्सुरो सोटू हैं। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।